Kein Bauwerk. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوستو بزرگو، میری حیثیت یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کے سامنے کچھ کہہ دوں، لیکن حضرت کی حکم کے مطابق جو کچھ ان کی توجہ سے میرے ذہن میں آتا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. اگر کچھ کمی بیشی غلطی ہوئی تو اس کی معافی چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ اجتماعات جو ہوتے ہیں تو یہ اجتماعات ایسے نہیں ہے کہ ہم یہاں کھانے پینے کے لیے یا کسی تجارت کے لیے یا کسی اور کام کے لیے جمع ہوتے ہیں. یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم یہاں آتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں کی یہ کوشش ہے کہ یہ لوگ اس کام کو اپنائے، اس کام کو کرے جو خالصتاً اللہ پاک نے حکم فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم نے کرنا ہے. دنیا میں قسم قسم کی اجتماعات ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک علیحدہ اجتماع ہے کہ اس کا مثال نہیں ملتا. اور جتنے ہم بزرگوں کے نام لیتے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہے، یہ سب کے سب اس کام کو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کیا ہے، اور وہ دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ اس کے متعلق بزرگ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ہر ایک آدمی اپنے گناہوں سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا اور مصیبت میں ہوگا، ہائے ہو ہوگا، بہت تکلیف کا دن ہوگا. لیکن یہ لوگ جو اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق بنایا ہے، تو یہ لوگ مشک کے ڈیروں پر سیر و تفریح کرے گا. اور اسی کے متعلق فرماتے ہیں کہ آشکارا روز محشر با قیامت کار نیست. آشکارا روز محشر با قیامت کار نیست، آشکارا جس تماشۂ جمال یار نیست. تو یہ لوگ اس امید میں بیٹھیں گے کہ ہم अपने अल्लाह के साथ कब मुलाकात करेंगे, कब मिलेंगे। और ये लोग होंगे कि जन्नत में जाने के बाद भी अफसोस करेंगे कि जो लम्हात हमने बगैर अल्लाह के नाम के गुजारे हैं वो भी न गुजारते। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला से इस दिन अर्ज करेंगे कि या अल्लाह, मेरी उम्मत का हिसाब किताब मुझे दे दे ताकि मैं इस तरीके से इसके साथ हिसाब करूं कि और किसी को पता न चले। तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाएगा कि मैं तो आपकी उम्मत के साथ ऐसा हिसाब करूंगा कि आपको भी पता न चले। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती को, उम्मत में हमने अपने आप को पेश करना है कि हम उसकी उम्मती बन जाए। ऐसे हरकत सकनात हमारे से ना हो जाए कि उसके उम्मत से हम खारिज हों, या हमारे करतूतों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन शर्मिंदा हो। वो हमारे आमाल हफ्ते में दो दफा उसको पेश होते, तो ये सारा काम, ये हमारे बुजुर्ग हमारे मशायख आप अंदाजा लगाए कि अभी इस हालत में हमारे तमाम बदन के अंदर अगर किसी का एक हाथ कमजोर है, बीमार है, किसी का टांग बीमार है, किसी का सर में दर्द है, तो वो कहते हैं कि मैं इज्तिमा में नहीं जा सकता। और हमारे हजरत जी सर से लेकर पांव तक, ये तो उसको पता चलता है कि कितना तकलीफ और कितना बेआराम, लेकिन उसके बावजूद हाजिरी देते हैं, हमारे पास आते हैं, हमारी तरबियत करते हैं ताकि ये लोग जन्नत वाले बन जाए। न कोई दुनियावी गरज है, न कोई ओहदे का हरस है, न किसी और चीज का हरस है, सिर्फ इस खातिर, क्यों कि अल्लाह तबारक व ताला ने बंदे को पैदा इसलिए किया है कि वो मेरी इबादत करे और ऐसे आमाल करे कि उसके ऊपर मैं उनको फिर दोबारा इनाम भी दे दूं। हमारे सर से लेकर पांव तक, हमारे बाल बच्चे, हमारे दुनियावी कारोबार, लेन देन, ये सब अल्लाह तबारक व ताला का है, हमारा कुछ इसमें नहीं है, कुछ मुदाखलत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद फिर हमें वो जो इनामात देंगे वो इंसान की सोच और फिक्र से बाहर है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने अम्बिया अलैहिस्सलाम के बाद, तबे ताबेईन के बाद ये लोग पैदा किए हैं और ये इंसानों पर ये मेहनत करते हैं कि ये ऐसे अल्लाह वाले बन जाए कि अल्लाह भी राज़ी हो जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी हो जाए और ये सब जन्नत वाले बन जाए। और जन्नत क्या चीज़ है, वो सिर्फ नाम हम तो अभी लेते हैं कि जन्नत में मेवे होंगे, जन्नत में फलाना होगा, जन्नत में ये होगा, ये तो सिर्फ मुशाबहत नाम का है। एक सुहाबी ने मफहूम इसी तरह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की बातें फरमाते थे, तो एक सुहाबी ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ बाप आप पर कुर्बान, जन्नत के अंगूर कितने होंगे, कितने बड़े होंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके वालिद ने कभी बकरा ज़बह किया है? हाँ ज़बह किया है। कि उसे ढोल बनाया है? कि हाँ ढोल बनाया है। फरमाया कि जन्नत के अंगूर का एक दाना उस ढोल के बराबर होगा। तो सुहाबी ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो पूरे घर के लिए काफ़ी होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो पूरे गांव के लिए काफ़ी होगा। तो ये चीज़ें इस चीज़ पर मिलते हैं कि यहाँ हम मोहब्बत का इजहार करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करते हैं, सुहाबा के साथ करते हैं, मशाइख के साथ करते हैं। तो ये मोहब्बत नहीं कि हम उससे मिले, हमको तोहफे दे, ये करे वो करे। मोहब्बत वो है कि वो जो कुछ हमें उससे पहुँचे, हमें मिले, उस पर हम अमल करें। सारी बात अमल की है, अल्फाज सीखने की नहीं है। अल्फाज सीखे उसके माने सीखे। आज सुबह एक साथी ने, अल्लाह पाक खुश रखे, जावेद साहब से किताबें ली थी, तो मैंने उसको कहा कि इसको ऐसा ना करो कि आप अलमारी का जीनत बनाए कि मेरे पास ये किताबें, ये पढ़ो, बार बार पढ़ो, इसमें जो चीज़ें हैं फिर उसको सीखो, उस पर अमल करो। ये इसलिए किताबें तकसीम करते हैं, पैसे के लिए तो नहीं तकसीम करते, ना चंदे के लिए तकसीम करते हैं, ना कुछ और गरज है। तो ये हमारे मशायख अल्लाह पाक ने जो हमको दिए हैं, हमको मिले हैं, हमारा इसके साथ, ये बात मैंने लंगर मखदूम में भी की थी कि 2007 में मैं हज पर गया, तो वो हुकूमत के थ्रू गया, साथी तो थे नहीं, उस तरीके पे चला गया, तो मैं अकेला होता था। सुबह सवेरे उठ के अपना जिक्र भी करता था और इशराक तक उधर ही बैठा रहता। तो एक दिन साथियों ने कहा कि आप हमारे साथ चले जाओ, थोड़ा बहुत आपको जबान समझ आती है, हमें तो कुछ समझ नहीं आता, कि ज़ियारात करें। तो हम बाहर जो मेन रोड है वो उस में खड़े हो गए गाड़ी के इंतज़ार में। तो एक बहुत हसीन और लंबे कद का आदमी खूबसूरत आया तो मेरे साथ मिला मुझे, कहते हैं कि आपका ताल्लुक हजरत बेग साहब के साथ है? तो मैंने बोला कि हाँ जी। कहते हैं क्या चाहिए? मैंने बोला दुआ। कहते हैं नहीं और कुछ? मैंने बोला नहीं दुआ, बस ये बात है, उसने की ये मैंने की, चले गए। फिर एक दिन ऐसा हुआ, यही अल्फाज उसने दोबारा इस्तेमाल किए और यही मैंने भी इस्तेमाल किए। तो हमें चाहिए कि हमारे अंदर ऐसी निशानियां हो, ऐसे आदात हो, ऐसे इबादात हो कि हम पहचाने जाए कि ये हजरत बेग साहब के शागिर्द हैं, तो तब काम बनेगा। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा दुनिया भी संवर जाएगा और बरज़ख भी संवर जाएगा और जन्नत भी संवर जाएगा। और अल्लाह करे कि हम सब اپنے مشائخ کے ساتھ یہاں بھی وہاں بھی اور جنت میں بھی ایک ساتھ ہوں. وما علینا الا البلاغ.